गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम निताई गौर हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जयों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की समवेत भक्तवृंद की इताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि तो जैसे आप सबको विदित है आज हमारे ये कृष्ण भावनामृत संस्था जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ शॉर्ट फॉर्म में अंग्रेजी में इस्कन कहते हैं उसका जन्मदिन है। इस संस्था का जो संस्थितिकरण बाकायदा कानूनी रूप से हुआ था वो आज की तिथि है, तो इसलिए आज के दिन हम दैनंदिन की तरह श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा ना करके हमारी संस्था के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद उन्होंने अपनी अकेली निजी बल पर जब उनका उम्र 69 साल के हो गया था 1965 में 13 अगस्त 1965 उन्होंने कलकत्ता बंदर से एक जहाज से मालवाही जहाज उसमें बैठ करके अमेरिका यात्रा पर चले। ऐसे हम लोग जहाज में तो अभी कोई गए नहीं होंगे मुझे लगता है, ट्रेन में जरूर गए होंगे, लेकिन ट्रेन में भी दो प्रकार का ट्रेन चलता है, एक मालगाड़ी एक पैसेंजर गाड़ी। आप लोगों में से कोई ऐसे व्यक्ति हो कि मालगाड़ी में बैठकर कभी ट्रैवलिंग किए होंगे? मुझे लगता है कोई नहीं होंगे। गुड्स ट्रेन में कोई नहीं बैठे होंगे। तो इसी प्रकार पानी में जो जहाज चलता है उसमें दो प्रकार का जहाज चलता है, एक पैसेंजर शिप एक कार्गो शिप। तो प्रभुपाद जी कोई पैसेंजर शिप में बैठ कर जाने वाले ऐसे शिप में नहीं गए, तो पैसेंजर शिप इतने दूर तक जाता भी नहीं, नज़दीक में जाता है। तो अमेरिका जाने के लिए विमान में नहीं जल पथ में एक पानी जहाज से गए, जो जहाज से माल जाता था समन जाया करता था। तो उनको दूसरा उपाय नहीं मिला, बड़े कष्ट से अपने कागजात पूरा करके और सिंधिया कंपनी के जो इंचार्ज थी तत्कालीन बॉम्बे में श्रीमती मोरारजी, उनके सहायता से उन्होंने एक टिकट लिए थे आने जाने वापसी, रिटर्न टिकट था उनके पास, और जहाज का नाम था जलदूत। उन्होंने टिकट लेकर के बम्बई से कलकत्ता आए ट्रेन से और एक हफ्ता पहले लगभग अमेरिका में पहुँचे, सॉरी कलकत्ता में पहुँचे, जिन कलकत्ता उनका जन्मस्थान था, उनका कर्मस्थान था, वहीं में पढ़े थे, उनके परिवार वहीं था, सब कुछ वहीं, पूरा बालपन युवकपन लगभग वहीं बिता था। आज इस वृद्ध अवस्था में, और उनके गृहस्थ थे उनके पत्नी पुत्र और उनके परिवार, उनके भाई संबंधी सब थे, लेकिन आज ये सन्यासी रूप में 69 साल के वृद्ध अवस्था में उन्होंने जब अमेरिका यात्रा के दौरान कलकत्ता महानगरी में पहुँचे तो उनके पास मिलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं थे, अकेले अकेले अपने पहचान के अंदर किसके पास जाऊँ चुन करके एक व्यक्ति के पास गए, डॉक्टर शिशिर भट्टाचार्य शायद उनका नाम था, उनके पास मिले। वो अच्छे बड़े आदमी थे, अच्छे भजन गाते थे, प्रभुपाद जी के साथ लखनऊ में मिले थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के फॉलोअर भी थे उन्होंने, तो उनके पास मिले, उनके पास कुछ दिन रहे और उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को अमेरिका यात्रा पर इस प्रकार प्रचार कार्य में जाने के लिए बड़े उत्साहित होकर के उनको कलकत्ता में तभी समय में जो बड़े बड़े आनंद बाजार पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जो मैगजीन पेपर था सब में एडवर्टाइज देने के लिए स्वामी जी को साथ में लेकर गए, टैक्सी भाड़ा करके उनका पूरा फोटोग्राफ व्याख्यान सब दिए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं छापा। एक छोटी मैगजीन था बसुमती करके, उस मैगजीन में प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बहुत लेख आया कि एक स्वामी जी है भारत के, ये वृद्ध अवस्था में अमेरिका जाना चाहते हैं धर्म प्रचार के लिए। जो भी हो, उन्होंने अपना जो प्रभुपाद जी ने, आप जानते हैं प्रभुपाद जी जो अमेरिका यात्रा में गए थे उनके पास धन केवल 40 रुपया था और एक छतरी था और कुछ पुस्तकें थी, तीन ट्रंक लोड पुस्तक था जो उनके साथ में नहीं था, वो कोचिन बम्बे से उन्होंने डाले थे, वो जाकर कोचिन में रखा हुआ था, प्रभुपाद जी ने कलकत्ता से चढ़े, पुस्तक उनके साथ था नहीं, वो अकेले गए थे छतरी के साथ और कुछ अपने सामान को, खाने पीने के कुछ सूखा पदार्थ था कि उनको भरोसा था कि पता नहीं अमेरिका में जाकर कुछ खाने पीने मिलेगा कि नहीं, जो भी हो उसको लेकर उन्होंने गए थे। उन्होंने लिखते हैं कि जब मैंने 13 अगस्त को सुबह 9:30 बजे उस कलकत्ता महानगर के गंगा के ऊपर जो जहाज खड़ा था, जलदूत, छोटा कोई बड़ा जहाज नहीं था, उसमें मैंने बोर्ड हो रहा था, प्रभुपाद जब चढ़ रहे थे तो उनको टाटा बाय बाय करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो अकेले शिशिर जी थे, शिशिर भट्टाचार्य जी, बाकी कोई नहीं थे, अकेले उन्होंने गए। तो प्रभुपाद जी ने भगवान की इच्छा के अनुसार, अपने गुरु जी की इच्छा के अनुसार इस भागवत धर्म को विदेश में विदेशी भाषा में प्रचार करने के लिए जब चले तो इस भगवान ने उनको चुने, कृष्ण ने उनको चुने कि ये भारत के वास्तविक राष्ट्रदूत, भारत के जो असली धन है, असली संपत्ति है, जो भगवत भक्ति, जो भगवान के संदेश है, उसको एक संदेश वाहक के रूप में भगवान के दूत बन करके जलमार्ग में गए, इसलिए इस जहाज का नाम भी जलदूत पड़ा। जलमार्ग में भगवान के दूत जो जा रहे हैं भगवान के संवाद को लेकर के, तो जहाज के नाम भी ऐसे बना के जलदूत, उस जलदूत में जल मार्ग में दूत बन करके प्रभुपाद जी ने जो गए, बाकी अनेक दूत तो गए होंगे लेकिन इस कार्य के लिए ईसा दूत कभी नहीं गया होगा, सबसे प्रथम दूत गए थे उन्होंने भारत से। जाते समय लगभग 6 हफ्ता लगा उनको इस समुद्री यात्रा पर, 6 हफ्ता, इसमें बहुत बड़ी कठिनाई उनको सामना करना पड़ा था, 2-2 बार हार्ट अटैक हुआ था। जैसे भी उन्होंने पहुँचे बोस्टन बंदर में, जब पहुँचे मेरा ख्याल में सितंबर 6 महीना के बाद, 6 हफ्ता के बाद पहुँचे थे, तो वहाँ पे उन्होंने उतर करके एक बार गए थे अमेरिका के दुनिया को देखने के लिए। तो पहले बार अमेरिका को देख करके उन्होंने इतने हताश हो गए, बिल्कुल उन्होंने आकर दुखी होकर के कविता लिखे, मार्कीने भागवत धर्म आप लोग पढ़ सकते हैं, वैष्णव गीत में है, उसमें अपने रचित हुई कविता में उन्हें लिखते हैं कि हे भगवान मुझे क्यों लेकर आया यहाँ, मुझे कोई नहीं पूछेगा मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे हताशा हताश में आपने मन व्यक्त किए हैं, लेकिन फिर भी हारे नहीं, फिर भी गए और न्यूयॉर्क बंदर में उतर करके, बोस्टन से आगे न्यूयॉर्क जा उतर करके पेंसिल्वेनिया गए थे, जो मथुरा के एक अग्रवाल जी थे जो उनका पत्र मंगा था, अपने बेटा था गोपाल करके रहता था अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में, तो उनसे वो पत्र मंगाए थे प्रभुपाद जी को इन्विटेशन पत्र, तो लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि वो आ जाएंगे स्वामी जी करके, लेकिन स्वामी जी पहुँच ही गए, पहुँच गए कैसे भी कैसे फ़ोन करके, कोई उनको, हम लोग तो ट्रेन में उतरते हैं कोई रिसीव करने के लिए आता है, उनको रिसीव करने वाले कोई नहीं थे, अकेले उतरे, फ़ोन किए, पूछे, इधर उधर करके बस पकड़ करके आधी रात को पहुँचे पेंसिल्वेनिया, आधी रात को अकेले वृद्ध व्यक्ति, लेकिन फिर भी उन्होंने, बड़े बुद्धिमान थे, पहले से अपने एक फोटो चित्र भेज दिए थे बाय पोस्ट अमेरिका को, तो उन्होंने देख लिए थे कि वृद्ध व्यक्ति स्वामी जी अगर आएंगे तो देखने में ऐसे होंगे, उनके फोटो भेज दिए थे पोस्ट में, तो जाकर पहुंचे थे, उनको उन्होंने लिए फिर अपने घर में रखे, कुछ दिन तो वहाँ रहे, लेकिन वहाँ उनका कुछ कार्य नहीं हुआ, उनके कुछ पुस्तक कुछ दिन के बाद पहुंचा, अकेले पहुंचे, उसके बाद उनके 3 बक्सा पुस्तक पहुंचा, जिसमें उनके अमेरिका में तो रूम का शॉर्टेज है स्पेस का, जो भी असुविधा में कुछ दिन उनके साथ रहे, अपने पुस्तक बेचने के लिए जाते थे अकेले, तो लगभग 6 महीना वहाँ रहे, कुछ इतना सफलता नहीं मिला, तो फिर उन्होंने न्यूयॉर्क गए, कोई एक डॉक्टर मिश्र का एड्रेस मिला था बम्बे से उनको, तो उनका पास गए, वो एक प्रकांड मायावादी था, यद्यपि उनके साथ मित्रता था लेकिन वो प्रचार के रूप में बड़े शत्रु थे उनको, प्रभुपाद जी उनके हल में जाते थे, बट को सुनते थे, बड़े युक्ति होता था, बोलते स्वामी जी मैं आपको लाइक करता हूँ लेकिन आप यहाँ नहीं बोल सकते हैं, अब क्या बात है, फिर भी उनका साथ रहते थे उन्होंने इतने शत्रु के साथ, कभी कभी प्रभुपाद जी को ऐसे स्थिति पर गुजरना पड़ता था कि किसी कमरे में किसी के पास रहते थे, जिनका घर में एक ही किचन में 2 बर्नर होता है, 2 चूल्हा होता है, वो एक चूल्हे पर वो अपने अपना हिसाब से खाना पकाएंगे, आप जानते हैं जो नॉनवेज आदि बनाएंगे, और दूसरे में प्रभुपाद जी ने अपने खाना पकाते प्रसाद, खुद को बनाना पड़ता था, वो मथुरावासी गोपाल अग्रवाल, उनके पत्नी शैली अग्रवाल, उनके घर में तो कुछ दिन के बाद प्रभुपाद जी को पका करके उनको खिलाना पड़ा, उनके घर में रहने के लिए उनके कुक बने, उनके घर के झाड़ूदार बने, सब कुछ बन के रहते थे, तो ऐसे ऐसे बड़े कठिन संघर्ष किए, 1 साल लगभग, 1 साल के पूरा होने के समय कई बार हताश हो चुके थे, तो लगभग 11 अगस्त ऐसे डेट है जब उन्होंने न्यूयॉर्क में आकर के कई जगह में रहे, बाद में लोअर स्टेट में, जहाँ न्यूयॉर्क का वो पुराना शहर था वहाँ कोई लोग नहीं जाते थे, उसी समय में अमेरिका में बहुत लोग हिप्पी हो जाते थे, हिप्पी जानते हैं आप लोग, जो पढ़ लिख करके सब प्रकार के सब कुछ उनके पास प्राप्त था, सब कुछ पाने के बावजूद उनको सुख नहीं प्राप्त होता था, तो इसलिए बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े डिग्री, अनेक धन संपत्ति, सब भोग ऐश्वर्य को छोड़ करके उन्हें नशे का सहायता लेते थे, और नशा करके वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ समुद्र किनारे रोड के साइड में ऐसे रंगे पड़े रहते थे, ऐसे उसी से सुख ढूंढने चाहते थे, नशे आदि करके सुख सुखी होना चाहते थे, इसी प्रकार हजारों संख्यक युवक युवती इस प्रकार होते थे शिकार, उसी समय प्रभुपाद पहुँचे थे, और इस पहुँच करके आपने ऊपर इतने भरोसा था, इतने कॉन्फिडेंट थे प्रभुपाद जी, तो समझाते थे लोगों को जा करके अमेरिका में इस गली में जहाँ लोग इसी भटके हुए युवक युवती घूमते थे, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कहते थे मैं आपको सुखी कर दूंगा, मेरे पास भगवान को जानने का रास्ता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के गारंटी देकर बोलते थे, और उनको समझा करके लाए और सफल भी हुए। और कुछ नहीं, बड़े आसान से बोले कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा। और उनको खोद पका करके कुछ प्रसाद खिलाते थे, उसके द्वारा उनको आकर्षित किए कर कर करके। वो कोई सुनने के लिए नहीं आते थे, कुछ बोर हो जाते थे सुनते सुनते, लेकिन खिलाना और कीर्तन, वो लोग भूत प्रेत की तरह आते थे वेशभूषाक में, और जो जिसमें आया हाथ में ऐसे बाजा बजाते थे, कीर्तन सुन के नाचते थे। प्रभुपाद जी के जो कीर्तन था उसमें बड़ी शुद्धता था, तो ये शुद्धता उनके चित्त को आकर्षण करता था, जिससे वो लोग आते थे कीर्तन सुनने के लिए। प्रभुपाद जी कुछ गीता के ऊपर व्याख्यान करते सोते थे, वो जाना पसंद जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर गुलाब जामुन दिखाते थे तो फिर वापस आते थे। इसी प्रकार उसको स्कन बुलेट कहते हैं, स्वामी जी स्वयं बनाते थे गुलाब जामुन, स्वयं गुलाब जामुन। एक न्यूयॉर्क सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में लोअर साइड में एक स्टोर फ्रंट दुकान के सामना, उसी को किराए में लेकर के वही अपने प्रथम मंदिर शुरू किए स्टोर फ्रंट में। कोई अटैच बाथरूम कमरा नहीं था, है ना, नहीं वहाँ अपने मंदिर या अपने विग्रह रखे, सब कुछ के ऑफिस सब कुछ वहीं शुरू कर दिए, कक्षा सब कुछ। सुबह उठ करके कहीं जाते थे कोई बाथरूम आजकल जैसे होता है सब अवेलेबल, इसे विदेश में आकर था, लेकिन वहीं रह करके शुरू किए। और वहीं पे बड़े आशा था उनके मन में, बहुत बड़ी आशा लेकर के वहाँ शुरू किए, और धीरे धीरे कुछ लोग को आकर्षित किए, कुछ युवक युवती को। और वहीं पे आज के तिथि में उसी समय के 66 का अगस्त 11 तारीख था, जिनमें शाम के समय में उन्होंने गीता के ऊपर प्रवचन दिया करते थे, तो कुछ लोग आके बैठते थे सुनने के लिए। तो एक उनके मित्र थे, उनसे उन्होंने अपने सोसाइटी को रजिस्ट्री कराने के लिए बड़े इच्छुक थे, अपने सोसाइटी की सपना पहले वो देख चुके थे, विदेश में एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना है, और उसका नाम भी क्या रखेंगे, ऑलरेडी वो पत्र माध्यम में प्रकाशित कर चुके थे। यद्यपि कोई मित्र उनको सुझाव दिया था, उन्होंने बोले थे कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा सोसाइटी में स्थापना करूँगा। कोई मित्र ने सुझाव दिए ये ठीक नहीं है, विदेशी लोगों के लिए आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कीजिए। प्रभुपाद जी ने उसको रिजेक्ट किए, उस रूपजाल को बोले नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड का कोई पर्सनालिटी नहीं है, गॉड कौन है कैसे पता चलेगा, हम एक व्यक्ति को जनाना चाहते हैं तो कृष्ण कॉन्शियस करेंगे, तो इस विदेशी व्यक्ति को पता चलेगा कृष्ण ही गॉड है, गॉड ही कृष्ण है, ये मेरा उद्देश्य है सिखाना। तो इसलिए अपने जिदी पर उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना करने का विचार विमर्श किसके साथ किए थे, तो एक वकील उनको मिला जिनका नाम था जेम्स गोल्डस्मिथ। उन्होंने इस प्रकार धार्मिक संगठन में बड़े उत्साह लेते थे, उनको बुला करके उनके परिवार को बुला करके भोजन खिलाते थे खुद बना करके, उनको भी साथ बड़ा मित्रता किए। तो उनको बुलाए थे कि आप, मैं इसे एक रजिस्ट्री करना चाहता हूँ, मेरे जो कानूनी कागजात आप तैयार कीजिए, और रजिस्ट्री करने से, रजिस्टर्ड सोसाइटी होने से हमने टैक्स एग्जेम्पशन, शायद कोई डोनेशन दे तो हमको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, कुछ मिलेगा। अभी डोनेशन एक भी नहीं आया था, एक भी रुपया कहीं से डोनेशन नहीं आने वाला थे, जुआड़ी शराबी उनके पास क्या डोनेशन आएगा, खुद किताब बेच करके जो पैसा कमाते थे उसी से बनाकर खिलाते थे, वो भी खिलाएंगे उठकर चले जाएंगे, अपने बर्तन भी नहीं धोएंगे, जगह भी साफ नहीं करते थे, वो भी समझिए कि खुद करना पड़ता था, बर्तन साफ करना, उनके प्लेट उठाना, वो भी करना पड़ता था, कोई डोनेशन नहीं आया था। इसी स्थिति में हम लोग होते तो थोड़ा विचार कीजिए, बिल्कुल नए परिवेश है, नए देश है, नए भाषा है, नए प्रकार के युवक युवती है जो बिल्कुल अद्भुत विचारधारा पर हैं, उनको किसी प्रकार से आकर्षित करना, आपने खुद पका कर खिलाना, उनको सामने गाना, कुछ भी करके एडजस्ट करके उनको साथ दोस्ती करना। और ये वकील के साथ फिर भी स्वप्न देखते थे मैं इतनी बड़ी सोसाइटी करूँगा। एक व्यक्ति मैनहट्टन में जो कंडक्टर थे, उन्होंने बोलते हैं कि एक बार स्वामी जी के साथ उनका वार्तालाप हुआ था, तो प्रभुपाद जी ने उनको कहते थे कि मैं तो देख रहा हूँ कि अमेरिका में बहुत सारे मंदिर है, मेरा बहुत सारे ग्रंथ है, पूरा मंदिर से भक्त लोग भरे हुए हैं, नृत्य कीर्तन हो रहा है, भगवान की सविधि पूजा हो रहा है। वो बोले ये क्या सपना देख रहा है, दिन में भी सपना देख रहे हैं? बोले नहीं, सपना नहीं, सब सत्य है। मैं देख रहा हूँ सब, यहाँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। बोले को है तो नहीं ना है, अभी हम देख नहीं पाते, समय का केवल अंतर है, अब समय पर सब प्रकट हो जाएगा। तभी कहते थे उन्होंने, और सोचते थे तो दिन में भी स्वप्न देखते थे स्वामी जी, लेकिन फिर भी हताश नहीं होते थे। उन्होंने कई बार अमेरिका में रह करके सिंधिया कंपनी के हमारे श्रीमती मुरार जी के पास पत्र लिखे, कई पत्र लिखे हैं रिक्वेस्ट करके, थोड़ा धनराशि भेज दो, अमेरिका में एक राधा कृष्ण का मंदिर बनाऊंगा, ऐसे धर्म प्रचार करूंगा, ऐसे करूंगा, वो नहीं किया। वो कानपुर पे जो सिंधिया कंपनी के इंचार्ज थे उनके पास लिखे, पद्मनाभ सिंधिया को मुझे कुछ शर्त के सहायता करो, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, वो भी सहायता नहीं मिले। श्रीमती मुरार जी बोले कि बहुत अच्छा आइडिया है, मैं इतने लाख डॉलर भेज सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है कि हम विदेश को पैसा भेजें। तो इसलिए प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखे, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे तभी, उनको भी लिखे कि कुछ हम परमिशन दे दीजिए, मैं कहीं से डोनेशन इंडिया से इकट्ठा करूँगा, तो यहाँ एक मकान खरीद करके वहाँ धर्म प्रचार करूँगा, भारतीय संस्कृति को प्रचार करूँगा। हमारा कंट्री के प्रधानमंत्री वो भी बोले कि नहीं, ये अच्छा प्रस्ताव नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिए। तो श्रीमती मुरार जी बहुत उत्साह थी, 200 लेटर उनके पास लिखी थी, उन्होंने पैसा भेजना चाहती थी, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली, इसलिए वो भी नहीं हो पाई। तो अंत में अपने गुरु भाइयों के पास लेटर लिखे, तीर्थ महाराज जी कई सब महाराज लोग थे कि हमारे गुरु जी का इच्छा था कि प्रचार करना देश विदेश में, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ अमेरिका में, अभी परिस्थिति बड़ा अनुकूल है, मैं भी कई जगह बिल्डिंग देख चुका हूँ, अगर इतने डॉलर मांगते हैं, अगर आप कुछ पैसा भेजें हम खरीदें शुरू कर दें। तो यहाँ जो उनके गुरु भाई थे जो अभी प्रेसिडेंट बने हुए थे गौड़ीय मिशन का, उन्होंने उत्तर दिए कि गौड़ीय मठ का धन इसी प्रकार के उपयोग के लिए नहीं है, इसी प्रकार हताशजनक, हर प्रकार से हताश होना पड़ता था, बड़े बड़े व्यापारियों से, सरकारी अधिकारियों से, अपने आध्यात्मिक गुरु भाइयों से, और अमेरिका में जो जिससे आशा रखते थे वो भी, और उनके पास जो मिलते थे कोई गंजोड़ शराबी नशेड़ी ऐसे ही भूत प्रेत पिशाच ऐसे लोग मिलते थे, उनको भी उनसे भी आशा लेते थे कि कुछ करेंगे, इतनी आशा उनके अंदर था, बलवती था। उन्होंने मन में मन डिसाइड कर लिया, मैं सोसाइटी रजिस्ट्री करूँगा और उसका टैक्स एडजमेंट सर्टिफिकेट के लिए उसको कानूनी दस्तावेज तैयार करूँगा, उसको रजिस्टर्ड करूँगा और फिर उसका ट्रस्ट बनाऊँगा, ये सारे मन में सोच लिए थे। कब टाइम मिलता था पता नहीं, इतने सारे सोच विचार करके और कर चुके थे, और वकील की परामर्श करके उनके साथ मित्रता भी कर लिए थे, खिला पिला करके, पैसा दे नहीं रहे थे उनको, उनसे डोनेशन शायद लेंगे, वकील को हम लोग कोई काम करने के लिए पहले पेमेंट देना पड़ता है, वो प्रभुपाद जी ने कराए वकील से पेमेंट ले करके, उनको बात करके खिला पिला करके, उनसे जेम्स गोल्ड स्मिथ थे बड़े प्रभावित हो गए थे, वो भी फिर आने लगे प्रभुपाद जी के कीर्तन प्रवचन सुनने के लिए उस 26 सेकंड एवेन्यू के जो स्टोर फ्रंट में। एक दिन शाम के समय वो आकर बैठे थे, वही 8 अगस्त 1966 शाम के समय उनके वकील जेम्स गोल्ड स्मिथ ने आकर बैठे थे, वही एक ही वर्णन किया जाता है, जितने युवक युवती उनके क्लास में इकट्ठा हुए थे सब किम्बुद किम्बाकार थे, केवल एक ही व्यक्ति जो थोड़े जेंटिल लगते थे, जो हिप्पी नहीं थे, वो एक ही व्यक्ति थे, वो वकील महाशय जेम्स गोल्ड स्मिथ, बाकी सब अद्भुत थे, कोई हिसाब किताब नहीं था, किस प्रकार भेष पोशाक अनुरूप रंग सब अद्भुत थे। इनमें से एक ही एक व्यक्ति बैठे थे जो पैंट कोट टाई पहने थे और वकील थे, आपने ब्रीफकेस लेकर आए थे, कुछ दस्तावेज लेकर आए थे उसमें। तो प्रभुपाद जी ने क्लास में ही उन्हीं के बारे में बोले कि आजकल बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कैसे विचार को बदल डालते हैं, आपने व्याख्यान में अपने विचार को बिल्कुल बदल डालते हैं, ऐसे भगवद गीता के ऊपर बड़े बड़े बुद्धिजीवी को अपने टिप्पणी लिख करके भगवद गीता के उद्देश्य को बदल डालते हैं, ऐसे कहते कहते कि बोले मैं अभी जीते जागते उदाहरण देता हूँ, वही हमारे सामने वकील साहब बैठे हैं। ये वकील साहब लोग ऐसे होते हैं कोई भी स्टेटमेंट को बिल्कुल उल्टा कर देंगे अपने बात में बात करके। प्रभुपाद जी बोलते मैं जब कलकत्ता में रहता था, उनके जमाने की बात करते हैं, तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एक टैक्स एक्ट शुरू किया, को टैक्स का कानूनी कोई नियम शुरू किया, उस नियम के एक बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता हाईकोर्ट में, उन्होंने उसको व्याख्यान करके और नियम को बिल्कुल बदल डाले, सरकार को बुद्धि खराब हो गया, हम तो इसी के लिए किए थे, तो बदला दिया उसको। हाईकोर्ट के माननीय जज भी उनको माने, तो हाँ उसका अर्थ यही होगा। तो गवर्नमेंट को अपने नियम को बदल कर फिर दोबारा नियम करना पड़ा। वकील लोग कितने बदमाश होते हैं, सब बदल डालते हैं आप जो लिखेंगे। तो इस प्रकार उनको उनके बारे में बताए, फिर उनको बोले और जेम्स गोल्डस्मिथ आपको कुछ कहना है उसके बारे में। तो उन्हें समझ गए स्वामी जी ने मुझे अपने काम में लगाना चाहते हैं। तो नोट करके बोले मैं सारे कागजात तैयार करके लाया हूँ, आपने मुझे जो बताए थे अपने ट्रस्ट के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, लेकिन मुझे अभी ट्रस्टी मेंबर चाहिए साइन करने के लिए। कोई आपका पास मेंबर है, आपके कोई जानकार है? मैं तो देखता हूँ आप अकेले हैं बूढ़े, कौन है? ना बहुत है, ये सब बैठे ना आपके सामने। अरे ये सब लोग, ये भूत प्रेत ना, हाँ ये सारे ट्रस्टी हैं। और जो बैठे थे उनको किसी को पता नहीं था ट्रस्ट होता है क्या है, संस्था क्या होता है, किसी लिए कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। अब रूपा जी बड़े गर्व से बोले, ये सारे बैठे हैं ना, ये सारे मेरे संस्था के पहले ट्रस्ट हैं, ट्रस्टी हैं। वो तो हैरान हो गए वकील साहब देख करके, बोले ये सब शराबी नशेड़ी है सुन, हाँ ये सब है, यही तो मेरे परिकर है, मेरे पार्षद हैं, उन्हीं से मुझे करना है। पूरे विश्व में धर्म प्रचार करने के लिए जो सपना देखते थे कि वृद्ध व्यक्ति 70 साल के उम्र के, और उन्हीं लोगों को लेकर के अपने पहली संस्था के जो रजिस्ट्रेशन की स्थापना किए उन्हीं लोगों से किए, उनको ट्रस्टी बनाए। वकील साहब भी संग हो गए देख करके, बोले मुझे साइन कराना चाहता हूँ, तीन प्रकार तीन वार्षिक उत्सव के लिए मुझे कम से कम 12 व्यक्ति चाहिए जो साइन करने के लिए तैयार हो। प्रभुपाद ने तुरंत नाम लिए, बोले खड़े हो जाओ, माइक, जेम्स, राफेल, रॉबर्ट, जो बेली, जो सब बैठे थे, अद्भुत अद्भुत नाम था उनका, सब खड़े हो गए। स्वामी जी के प्रति कुछ हेल्प करेंगे, स्वामी जी बहुत खाए पिए उनसे, खड़े हो गए। किसके लिए खड़े होते हैं उनको कुछ पता नहीं है। बोले आपको साइन करना, हाँ साइन करना है, किस लिए साइन करना है ये पता नहीं था। बोले तैयार है सब, साइन कर लो, ये हमारे ट्रस्टी है सब। तो वकील साहब ने वो गेट पर, छोटा सा कमरा था, गेट पर आपने ब्रीफकेस निकाले और आपने दस्तावेज निकाले, पेपर निकाल करके उनको बताते गए यहाँ पर साइन करना है। क्या लिखा है अंग्रेजी में इतने सारे पेपर में, उसको कोई पढ़ने का टाइम नहीं था, ना कोई पढ़ना चाहता भी था। लेकिन साइन करने से पहले उन्होंने बोले पहले ईयर का ट्रस्टी कौन होगा उस जाने। तो उनको पूछे, उनको वकील को पूछे, साइन करेंगे किसी लिए, क्या है ना, एक ट्रस्ट बन रहा है, एक संस्था बन रहा है, किसी लिए ट्रस्ट, किस लिए, किस कारण में ना, स्वामी जी ने कोई संस्था बनाना चाहते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किस लिए, वाई ये कोई पूछा था ना, नहीं ये कानूनी ट्रस्टी हो जाने के बाद गवर्नमेंट से हमको सुविधा मिलेगा, कोई टैक्स इन्वेस्टमेंट होता है, टैक्स कैसे होगा, कुछ डोनेशन पैसा होगा तब तो टैक्स लगेगा ना, धन तो है ही नहीं, सब भिखारी है। तो टैक्स कैसे, समझ जाएगा उठता टैक्स का। तो बोलते नहीं, शायद भविष्य में कोई डोनेशन दो, कोई डोनेशन कोई देगा भविष्य में बड़े रकम का, तो उसके लिए हम पैसे प्रावधान करते ना, कौन डोनेशन देगा, हम लोग खुद भिखारी की तरह वहीं दिखाते हैं, हम कहाँ से लेंगे डोनेशन, कौन देगा, स्वामी जी के पास तो हम ही लोग हैं, उनसे ही खाते हैं हम लोग। आप लगता है कि डोनेशन देने वाला तो केवल आप ही है, आप पैंट शर्ट पहने, बाकी तो कोई देने वाला नहीं, तो आपको टैक्स लगाना क्या जरूरी है, आप तो ऐसे दे देंगे। तो अप्पा जी सब सुनते हुए वकील भी आश्चर्य होता था, जो ट्रस्टी थे वो भी आश्चर्य होते थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। प्रभुपाद बोलते जस्ट साइन इट, जस्ट साइन, गिव योर एड्रेस। अब क्या करे, वो पहले जो तीन व्यक्ति साइन किए उनमें से पहला व्यक्ति थे, एक माइक थे जिनका नाम, अभी 2 महीने के बाद उनके दीक्षा भी दिया, दीक्षा दिलाया, उनका नाम मुकुंद दास पड़ा, और उनका एक गर्ल फ्रेंड थी जिनका नाम जान थी, वो जानकी देवीदासी हुए, वो जो बेली थी उमापति हुए, रोबेल थे और रविंद्र स्वरूप हुए, ऐसे ऐसे वो लोग सब थे, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन सबको बोले सब साइन करो, सब साइन कर डाले, पूरा ट्रस्ट डीड बन गया। जो ट्रस्टी बने उनको पता नहीं कि ट्रस्ट होता क्या है, किस लिए करते हैं, कुछ नहीं पता था। अब प्रभुपाद जी के कहने पर सब साइन टाइन करके कागजात रेडी कर दिए। तो वो जो कागजात के साइन, वो जो विधिवत कानूनी इन संस्था का पंजीकरण हुआ, वो आज के तिथि पर हुआ था, शाम के समय 11 अगस्त को था, जो तिथि के अनुसार इस साल में 8 अगस्त को पड़ रहा है। तो जब ही इस संस्था के पंजीकरण प्रभुपाद जी ने किए विदेश में, अमेरिका में, और न्यूयॉर्क सिटी का एक गए बीते स्ट्रीट पर जहाँ कोई बड़े आदमी ऐसे नहीं जाते थे, ऐसी शराबियों का अड्डा स्थली था बावरी के आसपास, वहाँ उन्होंने 26 एवेन्यू में उन्होंने ये संस्था को प्रथम, उनके जन्म स्थान यही और जन्मतिथि भी यही हुआ, और जो उसके पहली न्यासी वृंद बने, जो ट्रस्टी बने, ये सब ऐसे ही थे, कुछ नहीं पता था। इस प्रकार उन्होंने बना करके, कितनी बड़ी सपना उनका था कि उनमें करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वो किए भी। इस प्रकार उन्होंने हताश ना होकर के हर प्रकार से असफलता और हताश जब भी उनके हाथ में लगता था, फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़े, निराशा नहीं हुए, पूर्ण भरोसा रखते थे भगवान के ऊपर। रख करके जागे कागजात में आगे बढ़े तो उन्हें बोले कि आपके ट्रस्ट डीड में आपके पॉइंट रखो। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ट्रस्ट पहले भी कर चुके थे भारत में, आपको पता होगा, प्रभुपाद जी ने भारत में जब उनके गुरु जी के आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो झांसी में जब मैं बड़े बिजनेसमैन थे, झांसी में, लखनऊ झांसी इलाहाबाद हमेशा गश्त में रहते थे, तो झांसी में अधिक समय देते थे, तो वहाँ एक सोसाइटी रजिस्ट्री कर चुके थे उन्होंने, लीग ऑफ डिवोटीज, भक्त समाज करके एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, वो महिला संघ आज भी हुए, वहाँ जगह ले चुके थे, वहाँ कार्यक्रम शुरू कर दिए थे, एक शिष्य को दीक्षा दे चुके थे, उनका पहला शिष्य भारत में जो था, उनका नाम आचार्य प्रभाकर था, उनका आचार्य नाम भी था, अगर वो होते संस्था में आज सबसे पहले आचार्य तो हुई होते, लेकिन दुर्भाग्य भारत का कोई व्यक्ति नहीं बन पाया, वो भी कोई दूसरी संस्था में चले गए, झांसी का बात है। और जो लोग सो मिले थे वो भी सब अमंडर निकले, कौन कैसे कैसे निकले सब, प्रभुपाद जी के इतने प्रयास सब असफल हो गया, वो सोसाइटी बेकार गया, वो स्थान भी गया, अभी तक इस गण के हाथ में नहीं लग रहा है। इस प्रकार के असफलता होते हुए विदेश में भी, फिर भी प्रभुपाद जी ने इतने आत्मविश्वास था, इतने भरोसा था, उन्होंने अपने पत्र में लिखते हैं, बोले मेरा कार्य है प्रयास करना, सफलता और असफलता हो तो प्रभु जी के ऊपर है, ठाकुर जी चाहें तो मैं सक्सेस होऊंगा, नहीं चाहे तो हताश हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, ऐसे बूढ़ा हो गया और करते करते मर जाऊंगा, मरना तो ऐसे भी है, तो क्यों ना आशा क्यों छोड़ दूं, फिर भी आशा लेकर बताओ, कोई हम लोग होते कोई ऐसा आशा करते, अरे ऐसे कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसी स्थिति में। और केवल मैं यही बात नहीं कह रहा हूं, जो इसी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संस्था शुरुआत के इसी कठिन परिस्थिति में बिल्कुल हताशा की छाया के बीच में आशा लेकर के शुरू किए, जो जो मंदिर विदेश में नहीं भारत में भी जो जो मंदिर उन्होंने बनाए, उस मंदिर के जब शुरुआत की कहानी आप सुने तो आश्चर्य हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जगह में जमीन लेते थे, लोग बोलते थे स्वामी जी यहाँ कोई मंदिर बने, यहाँ कोई लोग भी नहीं आते, कुछ भी नहीं, यहाँ कौन आएगा तुम्हारा मंदिर देखने के लिए। हताश हमारे इसी कृष्ण बलराम मंदिर के इतिहास आप पढ़ करके देखिए, जब प्रभुपाद जी को जमीन मिला था तब यहाँ तो कोई नहीं आते थे ना, कोई भर बिल्कुल शून्य इलाका था, शून्य इलाका। आप पढ़ेंगे तो यहाँ लोग भक्त लोग प्रभुपाद जी आते कीर्तन करने के लिए, वहाँ उनके साथ देने के लिए एक बैल था, सांड है घूम रहा था इधर, बस व्यक्ति कोई नहीं हुआ करते थे। इसी स्थिति पर उन्होंने करते थे, हर जगह पर जब मंदिर बनाते थे ऐसे बिल्कुल हताश, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी आशा भरोसा रह करके शुरू करते थे और सफल हुए। केवल 12 साल के अंदर पूरी विश्व में चांचल्य सृष्टि करने वाले ऐसे महान आचार्य, जिन्होंने विश्वव्यापी कृष्ण भावना के आंदोलन शुरू कर दिए, जिनका शुरुआत ऐसे ही हुआ था, कोई विश्वास नहीं कर सकता है, सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी स्थिति से, इतनी स्थिति पर कोई आ सकता है, आए। ये है भगवान की कृपा, और उनके भगवान की इस प्रकार के स्थिति ऊपर उनका इतनी दृढ़ विश्वास था, अगर भगवान चाहे तो सफल हो जाऊंगा, नहीं हो तो नहीं होऊंगा, इस आशा से लेकर के उन्होंने किए। तो उन्होंने अपने जो झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज के रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उनमें भी जो 7 पॉइंट उन्होंने रखे थे, उनके विचारधारा ट्रस्ट डीड जिसको बोलते हैं, तो वही विचार परिवर्तन नहीं हुआ, केवल स्थान परिवर्तन हो गया, अभी भारत में था अभी अमेरिका में है, झांसी में था अभी 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क स्टेट में है, लेकिन वही विचार वहीं पे भी अंग्रेजी भाषा में लिखे उन्होंने। जो हमारे संस्था की सात मूलभूत जो विचार है, जो डीड है, उसको आप चाहे तो पढ़ करके सुना सकते हैं, आपको समझ जो आप पढ़ सकते हैं, कुछ लिपिबद्ध है उसमें, प्रभुपाद जी की महानता का प्रकट होता है, कितने उदार थे उनके विचार, कितने महान था। सबसे प्रथम डीड में जो लेख लिखते हैं उनमें ये विचार प्रकट करते हैं कि पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व की बात सोचते थे उन्होंने। हम तो अपने मंदिर की बात भी नहीं सोचते, अपने डिपार्टमेंट में ही सीमित रहता है हमारा विचारधारा, अपने डिपार्टमेंट कैसे अच्छा हो जाए, डिपार्टमेंट में नहीं आप में, मैं खुद कैसे अच्छा हो जाऊं, उससे आगे नहीं जा पाता, मर जाते विचार हमारा, आगे नहीं बढ़ पाता। वो आपने में नहीं, अपने परिवार नहीं, अपने डिपार्टमेंट नहीं, अपने गांव, देश, स्टेट, कंट्री नहीं, पूरे विश्व के बारे में शुरुआत से विचार उनका ही था, विश्वव्यापी, इतने उदार चित्त थे, सीधा विश्व के कल्याण के लिए कृष्ण भावना के प्रचार करना चाहते थे, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कैसे लोग का समुदाय कल्याण हो, लोग के उत्थान हो, उनके विचार बदले, जागृति आए, कितने हाई पोटेंशियल से वो देखते थे उसको, कितने उच्च धरातल इससे उच्च विचार में देखते थे। ये जो सात पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पूरे जीवन भर भी ऐसा सोचे थे इतने बड़े नहीं बन पाएंगे, इतने बड़ी विचार, इतनी बड़ी उदारता उनके अंदर था। इस प्रकार वही विचार को अंग्रेजी भाषा में उस रख करके इस संस्था की स्थापना किए, स्वयं संस्थापक आचार्य बने और बाद में स्वयं गुरु भी बने। आपने गुरु मंत्र स्वयं सिखाए अपने शिष्य को, शिष्य को ये सिखाए कैसे गुरु जी को प्रणाम करना होता है, कैसे गुरु जी को पूजा करना होता है, ये उनको स्वयं को सिखाना पड़ा। हाँ, और कोई था नहीं, क्या करें। यहाँ तक तो इसी स्थिति में आया था, जो पहले बार उनको किए पूजा वूजा अनुष्ठान किए तो सबको बुलाए, ऐसे तो भूत प्रेत थे सब, सब आए बैठ करके, बड़े बड़े आइटम खुद बनाए थे सब, बना करके उनको खिलाए और बोले कि सब टेबल चेयर हटा दो, नीचे खाएंगे। वो लोग सब विदेशी युवक जो बोले नीचे खाएंगे, नीचे बैठ कर कैसे खाना होता है, अब तक तो लेकर जैसे खड़े खड़े सब खा लेते थे, नीचे बैठ कर खाना उनको पता ही नहीं था, उनके संस्कार में नीचे बैठकर खाना होता ही नहीं था। वो बोले स्वामी जी नीचे बैठकर कैसे खाएं, बोले क्यों, बोले नीचे तो केवल कुत्ता बैठकर खाता है, हमारे अमेरिका में जो ग्राउंड में बैठकर केवल डॉग खाता है, कुत्ता खाता है, बाकी मनुष्य कहीं नीचे बैठकर नहीं खाते हैं, डाइनिंग टेबल में चेयर में बैठकर खाते हैं, जैसे आजकल हम लोग सब हो गए, नीचे बैठने पसंद नहीं करते। तो बोले कुत्ता खाता है, तो रूपा जी बोले हम सब कुत्ता बनेंगे, कुत्ते बनेंगे ना, हाँ इसी में हमारे जीवन की सफलता है, तो इसलिए अब चेयर टेबल से हटाओ, नीचे बैठना है। नीचे बैठ करके खाने के भी सिखाए थे, हाथ धोना भी नहीं पता था उनको। आप प्रभुपाल लीलामृत पढ़ेंगे तो देखेंगे, शुरुआत हमें से जो सब प्रभुपाल जी से मिले थे उनको हमेशा बस ये लगा हाथ धो, हाथ धुला के आओ। पहले जो उनको किचन में हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति आई थी, एक माता जी भी, तो उन्होंने भी सिगरेट पीती थी, हर चैन स्मोकर थी, तो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाती थी, लेकिन आशा थी स्वामी जी को हेल्प करूँ, प्रभुपाद जी उनको ले भी ली, बोले आओ कोई बात नहीं आ जाओ। और फिर वो कुकिंग करने में सिगरेट पीने लगी, प्रभुपाद जी बोले हाथ धो कराओ, अरे अभी तो हाथ धोया था, नहीं फिर हाथ लगा, फिर हाथ धो, तो परेशान हो गए हाथ धोते धोते तो हाथ धोने के कारण उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, बोले इतने बार हाथ धोना पड़ेगा मुझे। प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट नहीं बोले उनको स्मोकिंग छोड़ दो कल के, बोले वो भाग जाएगी, अगर स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलूँ मैं वो भाग जाएगी, तो बोले नहीं ठीक है स्मोकिंग करते रहो, अब मदद करना है मुझे आ जाओ, लेकिन जितने बार स्मोकिंग करना इतने बार हाथ धोना पड़ेगा। तो हाथ धोने का चक्कर में उनको सिगरेट छोड़ना पड़ा। तो ऐसे ऐसे वातावरण, ऐसे विवरण आता है, जो पहली बार उन्होंने दीक्षा उत्सव किए, स्वयं को सिखाया कि कैसे गुरु होते हैं, आचार्य क्या होते हैं, कैसे प्रणाम करना होता है, दीक्षा क्या होता है। वो जो पहले बार दिखा ले उनको पता भी नहीं चलता, हम दिखा लेना चाहे ठीक है, टेक ए ट्रायल, ऐसे मजा हमें चल लेता, चलो आप जाते हैं क्लब में चलते हैं, आज चलो ये खा लेते हैं, ऐसे विचार चलो दिखा ले देख लेते हैं क्या होता है। इसी प्रकार विचारधारा से दिखा लेने आए, तो कोई नियम निष्ठा नहीं बताए थे कि जब चार नियम पालन करना होगा, कुछ कुछ नहीं बताया उनको, बोले कि आप ले लीजिए फिर बाद में बताएंगे। खुद माला जप कर दे दिए, नामकरण दीक्षा उत्सव हो गया, सब होने के बाद में धीरे धीरे कोई अपने गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर आया, ऐसे किया, ऐसे के बुला करके बोले देखो अभी दीक्षा ले गए, इसके ऐसा अभी स्वाधीन चिता नहीं होना चाहिए। नहीं फिर क्या बोले, अगर दीक्षा ले ली कोई हम दूसरे को एक दूसरे को लव नहीं कर सकते? नहीं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैरिज करना पड़ेगा, मैरिज करना पड़ेगा। कैसे करें? ना मैं करवाऊँगा, मैरिज भी करवाए बैठा करके उनको, दोनों को कैसे करते हैं उनको पता भी नहीं था, कुछ विधि विधान पता नहीं था उनको, बिल्कुल पशु स्तर से मनुष्य स्तर में लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं था। कितने प्रयास करके बुढ़ापन, इस बुढ़ापे में उन्होंने शुरुआत किए थे उनको, और करके धीरे धीरे उनको सिखाने लगे कि अभी आप लोग को दायित्ववान होना चाहिए, अभी आप लोग प्रतिज्ञा किए, हवन भी खुद किए, बोले यज्ञ के सामने आपने प्रतिज्ञा लिए हैं, शिष्य बने हैं, तो इसे से नियम को पालन करना चाहिए। धीरे धीरे उनको सिखाने लगे, अगर पहले बताते सबको नहीं आता। कितने कठिनाई, कितनी आशा, कितने भरोसा के साथ, कितने विश्वास के साथ इस संस्था को उन्होंने शुरू किए, और इतने भरोसा और विश्वास के साथ उन्हें करके केवल 12 साल के अंदर पूरे विश्व में 108 आपने केंद्र स्थापना कर दिए, हजारों आपने अनुयायी रख दिए, इतने ग्रंथ अनुवाद कर दिए, इतने लेटर क्या क्या नहीं कर डाले इतने बूढ़ी उम्र में भी, जो हमारा सोच के बाहर है, सोचा नहीं जा सकता। सचमुच शास्त्र कहता है कि कृष्ण बिना तारा नहीं प्रवर्तन, भगवान कृष्ण के सहायता के बिना ये इस प्रकार प्रचार नहीं किया जा सकता है। तो गौड़िया मठ के जो नेत्र वृंद, जो उनको पहले सहायता नहीं की थी, उन्होंने बाद में प्रभुपाद जी के बारे में बोले कि उन्होंने निश्चित रूप से एक सत्यावेश अवतार होंगे, भगवान ने उनमें अपने शक्ति को आवेश कराए, नहीं तो इसे अद्भुत कर्म कैसे कर सकते हैं इसी उम्र में। आजकल तो हम लोग जैसे 70 साल की उम्र में अगर आपने आप बाथरूम जाए और आ जाए, बोलेंगे वो बहुत काम हो गया, बिना सहायता से चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने अकेले फिर विदेश में जा करके इस प्रकार स्थिति में कितने बड़ी भरोसा, कितने आत्मविश्वास होगा उनका कृष्ण के ऊपर, और उन्हें करके दिखाए। तो इस प्रकार अपने बल, अपने केवल विश्वास के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर भगवान के ऊपर इतने अगाढ़ प्रगाढ़ भरोसा विश्वास था, इसी कुल संपत्ति लेकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र को सहायता लेकर के इतने बड़ी विश्वव्यापी संस्था के संस्थापन कर डाले, और उनके सहयोगिता में बता कैसे कैसे लोग सब थे, वो करके दिखाए। कोई ज़्यादा पुराने बात नहीं है, अभी तो फिलहाल 40-50 साल की पुराने बात है। 50 साल के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन, अगर आज वो इस बुढ़े उम्र में जाकर ऐसा नहीं करते, आज आप और हम यहाँ बैठे होते पता नहीं हम कहाँ होते, कोई ऑटो चलाते कि रिक्शा चलाते कि खेती करते कि कहाँ नौकीदारी चौकीदारी क्या करते। ये उनकी तभी जो सपना था, दिन में भी देख रहे थे, मैं इतने मंदिर देख रहा हूँ, इतने पुस्तक देख रहा हूँ, इतने भक्त नाच कीर्तन कर रहे देख रहा हूँ, दिन में भी ऐसे सपना देखते थे उन्होंने। तो इस प्रकार के आशा, इस प्रकार के विश्वास, इस प्रकार के भरोसा, कितनी बड़ी बात है ये। अगर इस प्रकार के शक्ति का एक करोड़ों हिस्सा भी हमारा किसके अंदर हम लोग के आ जाए, तब तो हम भी कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इसलिए आज जैसे विशेष तिथि पर कम से कम इसी बात पर थोड़ा सा मनन चिंतन करना चाहिए। एक हमारे जैसे भारतीय व्यक्ति, कोई इतने हाइट भी नहीं थे, ज़्यादा हाइट नहीं था प्रभुपाद जी के, ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 फीट के उम्र थे, ऐसे सादा पोशाक पहन करके इसी हिसाब से जा करके विदेशी भाषा में, विदेशी स्थान में इतनी बड़ी संस्था को बना दे, जो अभी तक बढ़ती चले जा रही है, अभी तक तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी प्रसिद्ध संस्था है धर्म प्रचार के लिए। वो हजारे नौजवान को, तभी तो भारतीय लोग उनको नहीं सुन रहे थे, वही भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय ज्ञान को विदेश से जा करके इम्पोर्टेड करके ले आए, इम्पोर्टेड स्टाम्प इम्पोर्टेड कर अमेरिकी प्रोडक्ट करके जब लेकर भक्ति को इंडिया में पेश किए, भारतीय लोग तो पागल होकर स्वीकार किए उसको, पागल होकर के स्वीकार किए। तो इस प्रकार इतने अटूट विश्वास, आत्मबल भगवान के ऊपर रखा जाए और प्रयास किया जाए, आशा ही रखें, अगर सक्सेस हो तो सही, नहीं हो तब भी सही, भगवान की इच्छा है। अगर मेरे से वो काम कराना चाहते हैं तो सही, नहीं हो तब भी सही, दोनों ओर से हमारे जीत है। इसी प्रकार के विचार को लेकर के उन्हें जो अथक प्रयास किए तो आज के ये फल है जो हम यहाँ आपके सामने बैठ करके इस बात को चर्चा कर पाते हैं। ये सब उन्हीं के आज 50 साल पहले जो उनका इतने प्रकार विश्वास का जो प्रयास था, इस प्रकार के उनका जो विश्वास था उसी के फल है ये। वो अकेले व्यक्ति थे, उनके निजी विश्वास बल पर जब विश्व में चांचल्य सृष्टि कर सकते हैं, अगर हम जैसे व्यक्ति सभी में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा विश्वास लेकर के शुरू करें तो क्या हो सकता है, सोचा जा सकता, सोच सकते हैं? जब एक वृद्ध व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो अगर हम सब इसी प्रकार क्रांतिकारी भरोसा और आत्मबल को लेकर के चलें तो नहीं हो सकता क्या? अभी भी भगवान है, अभी भी भगवान की सहायता अभी भी कायम है, लेकिन हमारे पास आत्मबल नहीं है, निजी विश्वास नहीं है, बड़े कमजोर हैं हम लोग। जो भी थोड़ा बल है वो बहुत सीमित विचार में है, हम उदार महान नहीं बन पाते। अगर आप अपने आप को ऐसे महान बनाए, उदार बनाना चाहते हैं तो ऐसे महान व्यक्ति के पदचिन्ह पर चलने के लिए प्रयास कीजिए, उनके आदेश को हूबहू पालन करने के लिए चाहिए, तब निश्चित रूप से आप उनके प्रास्तविक दायाद बन सकते हैं। मैंने कभी कभी जब इस ऑफिस गली में करता हूँ, एक एक फोटो चित्र लगाया गया है वहाँ, आप पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी की पिक्चर है उस ऑफिस के सामने, तो उसके नीचे प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट लिखा गया है। प्रभुपाद जी ने अपने अनुरोध सारे अनुयायियों को करते हैं, उसमें उन्होंने ये लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने आप सभी को, मैंने अपने शिष्य अनुयायी को, उन्होंने कहते मैं सभी को करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि आपके पास जो भी थोड़े बहुत बुद्धि वृत्ति है सब आप केवल कृष्ण की सेवा के लिए नियोजित करें, ना कि अपने व्यक्तिगत काम में लगाएं। बहुत परिश्रम करके, बहुत परिश्रम करके मैं इस संस्था को बनाया, प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं कि ये भी परिश्रम सुन करके आश्चर्य हो जाए कोई, मैं बहुत परिश्रम करके इस संस्था को बनाया। अगर आप लोग सब अपने पर्सनल काम के, व्यक्तिगत काम के लिए इस प्रकार के अपने बुद्धि को लगाएंगे, अपने शक्ति सामर्थ्य को लगाएंगे तो ये पूरा ध्वंस हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मेरा विचार स्वप्न मिट जाएगा। तो इसलिए मैं सबको करबद्ध प्रार्थना अनुरोध करता हूँ, कृपा करके जो आपके शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति है केवल कृष्ण की सेवा में लगाइए। मेरे केवल यही एक भय है कि आप अगर व्यक्तिगत कार्य में लगाएंगे तो ये ध्वंस नाश हो जाएगा, केवल मेरा यही एक चिंता है। आपने चिंता प्रकट किए हैं अंतिम समय में रूपा जी ने। अगर हम लोग उन्हीं के खाते हैं, उन्हीं में, उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं के बात कह करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपने जीवन को बुलाते हैं, इतने मान सम्मान पाते हैं, अगर इतने बेईमानी न बन करके थोड़े से मान रख करके उनकी इस बात को चिंता के लिए चिंतित हो जाएं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए और हमारा संस्था भी फल फूल सफलित हो जाए। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।